आप हैं SBS हिंदी के साथ।
SBS हिंदी पर गौरव वैष्णव के साथ सुनिए 19 अगस्त शाम 5 बजे तक के मुख्य समाचार। विपक्ष का प्रधानमंत्री पर आरोप, कोविड वैक्सीन के लिए ब्रिटिश कंपनी से करार पर उठाए सवाल। भारत में कोविड संक्रमण से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत। और क्रिकेटर रोहित शर्मा सहित 4 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय विपक्ष ने सवाल उठाया है कि क्या प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कोविड 19 के टीके सुरक्षित करने के लिए ब्रिटेन की एक दवा कंपनी के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस करार से ये सुनिश्चित हो सकेगा कि इस वैक्सीन का परीक्षण सफल रहने पर प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के इस वैक्सीन को मुफ्त में पा सकेगा। लिबर पार्टी के नेता क्रिस बोवेन ने कहा कि लेटर ऑफ इंटेंट यानी आशय पत्र एक पहला और अच्छा कदम है, लेकिन एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कहा है कि औपचारिक तौर पर कोई समझौता नहीं हुआ है।
When the Prime Minister says Australians will have first access to this vaccine, he is simply not telling the truth. Other governments have acted. The first such agreement was signed in mid-May. His government has not acted, and no amount of spin today will change that fact.
हालांकि अब सरकार ने कहा है कि आखिरी समझौते में टीके का वितरण, इसकी टाइमिंग और इसका मूल्य भी शामिल होंगे। विक्टोरिया के स्वास्थ्य प्रमुख ने राज्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए आम लोगों की तारीफ की है। उन्होंने बताया कि राज्य में संक्रमण नीचे की ओर जा रहा है। पिछले एक दिन में राज्य में 216 नए कोविड संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 5 सप्ताह में सबसे कम है, लेकिन 12 और मौतों ने देश में कोविड संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 450 पहुंचा दिया है। प्रोफेसर ब्रेट सटन ने कहा कि आंकड़े उत्साह बढ़ाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने माना कि स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है।
Relatively speaking, Victoria's done pretty well globally with the second wave. There are countries that are being challenged by waves that are as big, if not bigger, than the first waves that they've experienced. That applies to Spain. Israel's the same. France is going through a really significant spike at the moment, and there's an uptick in Germany and the UK.
न्यू साउथ वेल्स में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 संक्रमण के 7 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो कि होटल एकांतवास में थे, जबकि लोगों में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैला है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कैरी चेंट का कहना है कि अभी भी राज्य में हर दिन औसतन 1 या 2 ऐसे मामले दर्ज हो रहे हैं जहां संक्रमण का स्रोत स्पष्ट नहीं है। वो कहती हैं कि ये मामले मुख्य तौर पर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी सिडनी में हैं। वो इस इलाके के लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहती हैं कि यहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत लक्षण दिखते ही जांच करवानी चाहिए।
That will help us identify any chains of transmission, take appropriate public health action, and contribute to our ability to suppress the virus transmission down to that level of no community transmission.
क्वींसलैंड में पिछले 24 घंटों में एक शख्स को कोरोना संक्रमित पाया गया है। ये होटल एकांतवास में था। ये मामला 40 साल से ज्यादा की उम्र के एक शख्स से जुड़ा है, जो कि पपुआ न्यू गिनी से वापस आया था। माना जा रहा है कि क्वींसलैंड में अभी सिर्फ 6 सक्रिय मामले हैं और पिछले 30 दिनों में यहां वायरस के सामुदायिक प्रसार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेनेट यंग लोगों से सहयोग की प्रार्थना कर रहे हैं।
We have very, very little flu in our community at the moment. We had 8 cases last week. So in actual fact, if you've got flu-like symptoms, you're just as likely to have COVID-19 as you are to have the flu. So it's very important if you have any symptoms at all to immediately come forward, get tested and isolate yourself till you get that result.
खबर न्यूजीलैंड से, जहां नए मामलों की संख्या में एक बार फिर कमी आई है। पिछले 24 घंटों में यहां पर 6 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 5 मामले स्थानीय संक्रमण के हैं, जबकि एक मामला एकांतवास सुविधा से सामने आया है। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने कहा है कि लगातार घटते मामलों से पता चल रहा है कि देश में वायरस का सामुदायिक प्रसार नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक एशले ब्लूमफील्ड का कहना है कि नए मामलों में 50 वर्ष से ज्यादा की उम्र की एक महिला हैं, जिन्होंने विदेश यात्रा की थी।
The other 5 cases are in the community and they have all been linked to the current Auckland outbreak. So there are now 125 people in the community who have been moved into the Auckland quarantine facility, and that includes 61 people who have tested positive and household contacts.
और अब खबरें भारत से। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एक बार फिर 24 घंटों में कोविड 19 के मामले 64,000 से ज़्यादा आए हैं। बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 64,531 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 27,67,273 हो गई है। वहीं इस दौरान 1,092 लोगों की मौत हुई है, जो कि एक दिन में अभी तक सर्वाधिक है। कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले लोगों की कुल संख्या 52,889 हो गई है। कुल संक्रमित मामलों में से 24.45 मामले एक्टिव हैं, यानी इनका इलाज या तो अस्पताल में चल रहा है या फिर ये होम आइसोलेशन में हैं। भारत के नीति आयोग के सदस्य ने बताया है कि भारत में कोविड 19 की 3 वैक्सीन बन रही हैं और इनमें से एक आज यानी 19 अगस्त से तीसरे चरण के परीक्षण में प्रवेश कर गई हैं। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में बताया था।
3 वैक्सीन हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। उनमें से एक वैक्सीन जो है वो फेज 3 ट्रायल में आज या कल में पहुंच जाएगा। बाकी 2 जो हैं फेज 1 फेज 2 में हैं, उनकी हमने रिव्यू किया है सबने मिलके, और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और वो अपने स्पीड से आगे ठीक तरह से बढ़ रहे हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सतलुज यमुना लिंक कैनाल को लेकर मंगलवार को हुई बैठक में केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। बैठक के दौरान अमरिंदर सिंह ने कहा कि यदि सतलुज यमुना लिंक कैनाल का निर्माण पूरा होता है तो हरियाणा के साथ पानी साझा करने का विवाद राष्ट्रीय समस्या का रूप ले लेगा और पंजाब जल उठेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इस वर्चुअल मीटिंग में मौजूद रहे। ये जल विवाद 1966 में शुरू हुआ था, जब पंजाब और हरियाणा राज्य अस्तित्व में आए थे। हरियाणा की मांग थी कि नदी के पानी का बड़ा हिस्सा उसे दिया जाए, हालांकि पंजाब ने अधिक पानी नहीं होने का हवाला देते हुए इससे इनकार किया था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े एक मामले में भारत की सर्वोच्च न्यायालय आज फैसला सुनाएगी। दरअसल अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने पटना में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए एक याचिका दी है। कोर्ट को यह भी तय करना है कि इस केस की आगे की जाँच कौन करेगा। आपको बता दें कि यह मामला सीबीआई को दिया जा चुका है और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के अपने घर में मृत पाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फंड में स्थानांतरित करने की याचिका पर अपना फैसला देते हुए इससे इनकार किया है। इस आदेश को मोदी सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उनकी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 6 सालों के कार्यकाल में किसी ने भी तथ्यों के साथ उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए हैं।
ट्रांसपेरेंसी इज रिट लार्ज इन द पीएम केयर्स फंड, बोथ इन टर्म्स ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट ऑफ फंड्स रिसीव्ड ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। इसमें पूरे फंड वॉलंटरी रूप से आते हैं। हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है और अभी तक एक भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की किसी को तथ्यों के साथ हिम्मत नहीं।
और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को यह खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54.02 रुपए और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 72 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल जगत से। टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा के लिए मंगलवार का दिन बहुत ही बड़ी उपलब्धि लेकर आया। रोहित शर्मा भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले सिर्फ 4थे क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित को 3 अन्य खेलों के खिलाड़ियों विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, मरियप्पन थलांगू के साथ संयुक्त रूप से ये अवार्ड मिलेगा। और पुरस्कार के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब 4 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार मिलेगा। फंतासी खेल प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने चीनी कंपनी वीवो की जगह लगभग 4.5 महीने के करार के लिए 222 करोड़ रुपए की बोली के साथ इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2020 का टाइटल प्रायोजन अधिकार हासिल कर लिया है। ड्रीम इलेवन पहले से ही पिछले कुछ वर्षों से आईपीएल के प्रायोजन से जुड़ा है। आईपीएल अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने पीटीआई भाषा को बताया कि ड्रीम इलेवन ने 222 करोड़ रुपए की बोली के साथ अधिकार हासिल किया है। ये पता चला है कि टाटा समूह ने अंतिम बोली नहीं लगाई, जबकि दो शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां बायजूस और अन अकेडमी दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। चीनी कंपनी वीवो के साथ इस साल का करार भारत चीन सीमा विवाद के बाद खत्म कर दिया गया था। और अब डालते हैं नजर कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। यहां अधिकतम तापमान 19 डिग्री जबकि न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 15 डिग्री न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में कल बारिश कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान 14 डिग्री न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में छिटपुट बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 10 डिग्री न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में ज्यादातर धूप रहने की संभावना है, लेकिन यहां हवा का रुख सामान्य से तेज रह सकता है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में धूप रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में सुबह के कोहरे के बाद दिनभर धूप रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली का आसमान गहरे बादलों से घिरा रहेगा। यहां तेज बिजली चमकने का भी अंदेशा है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचारों में आज इतना ही।